Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sri Shankar Bhagavat Pad Virachita Dashashloki Na Bhumir Na Toyam Na Tejo Na Vayur नखं नेन्द्रियं वा न तेषां समूह अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्ते कसिद्ध तदेको वशिष्ठ शिवः के न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणाध्या योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहाना तदेको वशिष्ठ शिवः न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्ताति शून्या तदेको वशिष्ठः शिवः केवल न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनं न मीमा कादेर्मत विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ न चोर्ध्वं न चादु न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम न तिर्यम न पूर्वापरादि वियद व्यापकत्वादखण्डैकरूप तदेको वशिष्ठ शिवः केवल न शुक्लम न कृष्णम न रक्तम न पीनम न कुब्जं न पीतं न ह्रस्वं न दीर्घं अरूपं तथा ज्योतिराका कत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः के न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेको वशिष्ठ शिवः न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजस प्रा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवल अपि व्यापकत्वाधितत्वप्रयोगा स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेको वशिष्ठ न चैकं तदन्यत् द्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवलत्वम् न शून्यम् न चाशून्यमद्वै कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् कथम सर्ववेदान् प्रसिद्धम्। दश श्लोकी के आधार पर करीब विगत 10 दिनों से हम लोग आचार्य शंकर के द्वारा विरचित जो यह दश श्लोकी है, आज चतुर्थी तिथि हो गई, कल थी अक्षय तृतीया। जो कुछ भी करो सब अक्षय हो जाता है। कल है पंचमी, आचार्य शंकर की जयंती है, शंकराचार्य जयंती। कल थोड़े शंकराचार्य जी के स्तुति का पाठ कर लेंगे, कुछ देखते हैं जो करना होगा कल ही कर लेंगे थोड़ा सा। उनकी बड़ी कृपा है, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए जो अद्वैत ज्ञान का पाथेय दिया हम सब के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हम सब उनके ऋणी हैं। शंकरम लोक शंकरम, भगवान शंकर ही लोक शंकर बनकर के आए, और उस समय जो संसार के प्राणी दुखी थे, ऐसे धर्मों का प्रचार हो रहा था जिससे आत्मकल्याण हो नहीं सकता था, जिसके लिए उन्हें आना पड़ा। भगवान भगवत्पाद आचार्य शंकर को जब बद्री नारायण भगवान स्वप्न देते हैं कि मैं नदी में पड़ा हूं, तभी वहां से निकाल करके मूर्ति स्थापित करते हैं जो बद्रीनाथ। इसलिए कल बद्रीनाथ केदारनाथ का कपाट भी खुल गया। उसी दिन हमारे दिल्ली संन्यास आश्रम में जो मंदिर का शिखर है, उसमें चार दिशाओं में भारत के चारों धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ है, पश्चिम में द्वारकाधीश है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व में जगन्नाथ है। तो वहां पूजा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, बद्रीनाथ केदारनाथ आदि की यात्रा शुरू हो गई। अब आचार्य शंकर ने ही बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित की है। अलकनंदा में पड़े थे, भगवान उनको स्वप्न दिया उसमें कि मैं यहां पड़ा हूं, तो वहां से उनको निकाला और स्थापित किया। आज उस मूर्ति को केवल नम्बूदरी पाद जो ब्राह्मण है रावल जी, वही उस मूर्ति को छू सकते और कोई नहीं छू सकता। यदि बद्रीनाथ का पूजा आपने देखी होगी, जो स्पेशल पूजा होती है ना, पहले तो 3,500 के रसीद कटवानी पड़ती थी, अभी शायद हो गया 6,000-7,000 होता है, 10,000 भी हो गया होगा, केवल आगे बैठ के देखने के लिए। उस समय उनके शरीर पे जो भी बधा होता है सब खोलते हैं, पूरा दर्शन होता है। बाद में जो आम दर्शन होता है केवल मुखारबिंद दिखता है, जो शरीर है पूरा वो कोई पारसमणि कुछ है बोलते, उसको छुआ दे तो लोहा सोना बन जाता है। तो कोई मिसयूज न करे, इसके लिए रावल जी ही उस मूर्ति को छुएंगे, और पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगता है भगवान का, इतना चंदन लगता है घिसते रोज, पूरे चंदन का लेप लगता है। उसके ऊपर एक हल्का सा सूती कपड़ा वो लिपेट देते हैं, फिर ऊपर से भगवान का पूरा श्रृंगार होता है। वही जब दूसरे दिन खोलते तो चंदन सबको प्रसाद में मिलता है। ऐसी पूजा देखने लायक बनती है। और जो बाहर बाकी ब्राह्मण है वो बाहर बैठ के रुद्री के जो दूसरा अध्याय सहस्र सी रेखा पुरुखा ये सब पाठ होता है, विष्णु सहस्र नाम का पाठ होता रहता है। और रावल जी जब आते हैं मंदिर में तो रास्ते में पूरे पानी छिड़कते हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर, कोई बीच में नहीं आएगा। नहाते हैं गर्म कुंड में, जहां आम पब्लिक वहीं पर एक कमरा जैसा बना उसमें वो नहाते हैं, और जब तक विवाह नहीं होगा तब तक वो पूजा कर सकते हैं। विवाह के बाद फिर दूसरे रावल जी आ जाएंगे, गृहस्थ नहीं होंगे वो। एक तरह से राजा है भगवान विष्णु के पार्षद, बड़ा उनका सम्मान होता है। दो सेवक छड़ी लेके, जैसे मंडलेश्वरों के चलते ना कुंभ में देखा हो, ऐसे उनको लेके आते हैं और घर तक छोड़ के आते हैं। और जो अंदर सेवक होते एक एक सामग्री उनके हाथ में देंगे, मूर्ति को केवल वही छुएंगे रावल जी, और बाकी जो ब्राह्मण वो बाहर पाठ करेंगे, वो भी अंदर नहीं जाएंगे कोई भी। वहीं पर भगवान के बगल में गरुड़ जी हैं, उद्धव जी हैं, नरनारायण भगवान हैं, ये सब एक एक करके दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं सब। बड़ा आनंद आता है। वही है ना, टका धर्म टका कर्म। वो तो हम लोगों ने कर दिया ऐसा, भगवान तो सबके लिए एक समान है। अब जो बेचारे नहीं दे सकते उन लोगों को बाद में दर्शन के लिए दरवाजा खोलते तब तक तो सब हो चुका होता है। वो बाहर के मूर्ति मूर्ति देखो, दर्शन करो, चलते बनो। असली पूजा ये होती देखने लायक। तो ऐसा अक्षय तृतीया के दिन कल से शुरू हो गया और दीपावली तक करीब खुला रहेगा। फिर बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है, ठंडी आती है। अब 6 महीने तक हम लोग पूजा करेंगे, मनुष्य लोग जाएंगे ना सब यहां से। और सर्दी में जब बर्फ पड़ती है तब नारद जी जाते हैं भगवान के पास, और जो जो अभी दर्शन करने गए होंगे सबका लेखा जोखा बताएंगे, भगवान ये आए थे ये आए थे। एक बार एक कन्या रह गई थी अंदर बंद, पता चला होगा ना आप लोगों को, मंदिर में बंद रह गई थी। 6 महीने के बाद जब कपाट खुला जीवित मिली, कुछ खाए पिए बिना। और उसने कहा अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती, मुझे कोई छुओ मत। 2-4 दिन शायद रही, शरीर छोड़ दिया। ऐसा विलक्षण आज भी वो देवभूमि है भगवान जहां विराजमान है। अब तो पिकनिक स्पॉट जैसा हो गया, लोगों की भावना अलग हो गई, गाड़ी मोटर भागो खाओ पियो मौज मस्ती करो। और उसका परिणाम ये हुआ 2013 में केदारनाथ में कैसा एक प्रलय आया। आज उज्जैन में देख लो शंकर जी भी तीसरा नेत्र खोल दिए। कब कहां क्या हो जाए, अपराध करता है कोई फल भुगतना पड़ता है सबको। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जैसे सब होंगे। चोर सोचता है कि सब चोर होंगे, धर्मात्मा सोचते सब धर्मात्मा होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। सामने कुछ दिखाई देता, अंदर कुछ और होता है। अस्तु, ऐसा प्रसंग आया इसलिए हमने इसमें थोड़ा बता दिया। 10 श्लोकी के माध्यम से समझ लीजिए, हम लोग रोज 10 श्लोक के अर्थ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। या आप बस समझना पहले श्लोक से आगे क्यों नहीं जा रहे, उसकी टीका इतनी लंबी चौड़ी है तो पूरे हम पढ़ते भी नहीं। इसको पढ़ेंगे तो 2-3 साल चलेगा पहला श्लोक, लेकिन इसका हमें भावार्थ लेना है। 5 भूतों के द्वारा जो निषेध किया जा रहा है कि न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, दोनों बात आ गई थी इसमें, मैं पृथ्वी नहीं हूं, पृथ्वी मैं नहीं हूं। 5 भूत मैं नहीं हूं, मैं 5 भूत नहीं हूं, दोनों तरफ से निषेध होगा। अच्छा, नहीं हूं का मतलब हो गया फिर हो क्या आप, तो कह दिया तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम, एकमात्र मैं साक्षात शिव स्वरूप हूं, केवल कोई इसमें मिलावट नहीं, शुद्ध ब्रह्म यही हूं मैं। अनैकांतिकत्वात् अविनाशित्वात् अव्यभिचारित्वात् कभी नहीं बदलने वाला। अभी इसमें सम्मिश्रण हो गया, यह और वह कह करके जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग बोलते युष्मद और अस्मद। युष्मद का मतलब होता है तुम और अस्मद का मतलब होता है हम। अथवा अस्मद में जिस शरीर को लेकर के आप प्रयोग करते हो यह हम है, तो ये क्या किसका है, 5 भूत का ही तो बना हुआ शरीर है। 5 भूत का शरीर वाले हम, 5 भूत के शरीर वाले तुम, और इसमें चेतन के मिलावट होने से, चेतन का जो स्पंदन हो रहा है इसी वजह से अध्यास होता है। तुम और हम अथवा यह और वह, यह हो गया शरीर, वह हो गया 5 भूत, ये दोनों तो हो गए अपने से भिन्न। इसको बोलते हैं इदम रूप, इसी को कह देंगे त्वम रूप। और तत्रूप से रहने वाले अर्थात तत भी एक तरह से ईश्वर का स्वरूप बताया, वो भी परब्रह्म परमात्मा की उपाधि है। उपाधियों को छोड़ना है, जीव और ईश्वर तब तक ईश्वर और जीव कहलाते हैं चाहे जीव में अल्पज्ञता हो और ईश्वर में सर्वज्ञता हो, ये दोनों ही आरोप हैं। जैसे हम बोलते हैं ज्ञान हो गया, कौन बोलता है ज्ञान हो गया? जो बोलता है पहले कि मुझे अज्ञान है, अज्ञान भी आरोपित है, इसलिए ज्ञान हुआ ये भी आरोपित है। ज्ञातता और अज्ञातता जो आरोपित हुआ इसको निवृत्त करना, तब जाकर के तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। युष्मद् और अस्मद् प्रत्यय के जो विषय है, यह और वह करके जो बोला जा रहा है, यह का मतलब हो जाएगा यह शरीर, कीटाणु से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं सब यह से कहलाते हैं। और यह बना किससे? जो वह है, वह क्या है? तो पृथ्वी से लेकर के अहंकार पर्यंत, प्रकृति पर्यंत, अव्यक्त माया पर्यंत, सब के सब वह में आ जाएंगे। अब मेरा स्वरूप न यह है न वह है। अनुभव में जो आए वो सब अलग है, और जो अनुभव से परे है, अनुभवातीत, वो हमारा अपना स्वरूप है। मुख्य आत्मा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, आत्मा का लक्षण भी कल बताया था, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाति विषयानि यः, यच्चास्य संततो भाव तस्मात् आत्मेति गीयते। दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं सब के सब आत्मा की सत्ता में ही होता है। चाहे संसार के जितने भी पदार्थ ले लीजिए, मैं हूं इसलिए हमें वह पदार्थ चाहिए, और उस पदार्थ को हम जानते भी हैं, और उस पदार्थ से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अपने से भिन्न वस्तुओं में विचार करो आप, सदरूप से तो सर्वत्र परमात्मा की सत्ता स्फुरित हो रही है। उदाहरण दिया था, ये डब्बा है, डब्बा था, डब्बा होगा, ये तो सदरूपता है, है के द्वारा जो प्रतिपादित हो गए। कोई भी पदार्थ हो, जड़ हो, चेतन हो, सब में है का प्रयोग होता है। चेतन कितना ही है कि मैं हूं बोलता हूं, अस्थि वही अस्थि भाति प्रियम चेति, तो अस्थि जो है ये सदरूपता का प्रतीक है। लेकिन ये डब्बा अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैं डब्बा हूं। डब्बा है को भी प्रकाशित हमने किया, यहां तक कि डब्बा नहीं है इसके अभाव को भी प्रकाशित मैं ही करता हूं। इसलिए क्या है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। स्वयं प्रकाश का मतलब ही होता है जिसको अपने को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। डब्बा है इस भाव को प्रकाशित मैं कर रहा हूं, डब्बा नहीं है इसको भी प्रकाशित मैं कर रहा हूं। जब हम बोलते हैं मैं हूं, ये स्वयं प्रकाश रूप है, इसमें किसी की अपेक्षा लेकर के नहीं बोल रहे आपकी मैं हूं। इसलिए कहते हैं सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता। वह संपूर्ण वेद्य मतलब जानने योग्य पदार्थ को जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। हाँ, जान सकते हो जगोगे तो, सो जाओगे तो गड़बड़ होगा। मैं हूं और मैं अपने को जानता भी हूं। डब्बा है को भी बताने वाला मैं, डब्बा को जानता हूं बताने वाला मैं, और यह डब्बा हमारे सुख का साधन है, इससे हमें आनंद लेना है, इसको भी बताने वाला मैं। ये सब दृश्य पदार्थ है। शरीर को लेकर के जब विचार करते हैं जिसका नाम है मिथ्या आत्मा, शरीर से भिन्न पदार्थ में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है उसका नाम है गौण आत्मा। इतना भी ध्यान रखिएगा, जैसा इसमें आ रहा है अभी कहां पर अध्यास पूर्वक लोग तद विशिष्टे च बाह्याराम पुत्र भार्यादि नाम साकल्य वैकल्यादि धर्माध्यास, पुत्र पत्नी आदि में होने वाली जो आत्मत्व बुद्धि है, पुत्र स्वस्थ है तो आप बोलते हो मैं भी स्वस्थ हूं, बेटा बीमार हो गया तो ऐसा लगता है कि मैं भी बीमार हूं, जबकि संसार का स्वरूप कुछ उल्टा है। पिताजी बीमार है, बच्चा भी थोड़ा बीमार हो गया या किसी कारणवश अकस्मात उसकी मौत हो जाए, बड़े दुख का वातावरण आता है कि पिता के रहते हुए पुत्र चला गया, अरे बाप रे बाप क्या होगा, अब जो होना था वो तो हो गया, जाके उसके क्रियाकर्म किए, अब पिताजी बीमार पड़े, क्या उनका इलाज करना बंद कर दें, या पिताजी कहेंगे कि वो चला गया तो मेरा इलाज मत करो मैं भी जाना चाहता हूं। ये तो जब तक शरीर है तब तक करना ही पड़ेगा, जिसको जाना था वो जाएगा। अभी उस दिन बताया था ना जो कथा में विघ्न आया, कोई गुजर गए, सब बोले सूतक लग गया, ये लग गया, नहीं होगा। उसमें एक सज्जन ऐसे भी थे, वो मेरे पास आए, बोले महाराज आप कथा बंद मत करना। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम बंद करने के लिए नहीं आए, हम तो शुरू करने के लिए आए। रह गई बात जो गुजर गए तो स्वयं बोलते अरे महाराज रोज लोग गुजरते ही रहते तब तो कभी कथा होगी ही नहीं, जाने वाला तो जाएगा उसको कौन रोक सकता है। हम लोग क्या चाहते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आने वाले को आने से नहीं रोका जा सकता, जाने वाले को जाने से। अभी हम लोग जो रुके हुए किसके प्रयास से रुके, अपने प्रयास से कि भगवान की कृपा से। लग कैसा रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे गाड़ी में आगे बैठे हो और ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो हम भी थोड़ा अपना पैर दबा देते हैं, लगता है यदि पैर नहीं दबाया तो गाड़ी आगे न निकल जाए, हम पैर भले ही दबाए और ड्राइवर न दबाए तो गाड़ी रुकेगी क्या। समझ में तो ये आना चाहिए कि हमारे पैर दबाने से भी गाड़ी नहीं रुकती, नहीं दबाने से भी नहीं रुकती, वो तो ड्राइवर है, वो यदि दबाएगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं तो आगे जाएगी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सब लोग लगाने लगे अपने अपने डंडे, और यहां तक बोल रहे अरे आपके हाथ में दर्द हो गया होगा, थोड़ी देर के लिए आप विश्राम कर लो, 7 दिन होने जा रहे हैं, हम लोग तो खा पी भी रहे, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, और यदि भगवान थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए भी ब्रेक लगाते तो सबका ब्रेकफास्ट हो जाता और क्या होता। भगवान को हंसी आ रही, लेकिन बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, यही है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि वो तो कौन टिटहरी पक्षी क्या है वो, टिटहरी समुद्र के किनारे रात में, हम लोग जो बॉम्बे में सुरक्षित है ना वो उसी की कृपा है। टिटहरी जो है रात में समुद्र की तरफ पैर करके लेट जाती है, उससे पूछा क्यों ऐसे करती हो, बोले कहीं समुद्र बॉम्बे में ना घुस जाए, उसको रोकने के लिए पैर उठा के रहती हो। क्या समुद्र का पानी आएगा टिटहरी बच पाएगी, लेकिन ऐसा वो मान लेती है कि जब तक हम दोनों पैर उधर नहीं करेंगे तो बम्बई वाले शांति से सो नहीं पाएंगे, सबका यही हिसाब है। लेकिन अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। गाते भी है हम लोग, बोलते भी है, लेकिन क्या सौंप पाते हैं, बहुत मुश्किल है। रात्रि में सोते हैं ट्रेन में, अपने सामान की सुरक्षा की बड़ी चिंता रखते हैं सब लोग, लेकिन गाड़ी चलाने वाला यदि कुछ गड़बड़ कर जाए फिर क्या होगा, वहां पर भी हम लोग कैसे सोते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन को ड्राइवर तुम्हारे हाथों में, अब जैसे भी सवेरे आपको ला करके बम्बई स्टेशन आ गया, पहुंच गए, रात्रि में उठ रहे हो, जितने बार बाथरूम जा रहे हो सीट के नीचे देखते सामान ठीक ठाक है कि नहीं, जंजीर लगाने के बाद भी लगता है कोई खोल न लेवे, चाबी भी देख लेते कई बार ठीक ठाक है कि नहीं, जितना हमारे बस में वो तो हम करते ही है, लेकिन जहां जिसके हाथ में गाड़ी है जो चला रहा है उसको सौंप करके उसके भरोसे ही हम लोग यात्रा करते हैं। ऐसा ही हम लोगों का ये जीवन यात्रा है, जो यात्रा चल रही है, भगवान ही चला रहे हैं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन उठा लेंगे, लेकिन मन है कि मानता नहीं, रहा नहीं जाता है। तो पुत्र भार्या आदि में सकलता और विकलता का आरोप हम अपने ऊपर कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए पांच भूतों का बना हुआ ये जो पिंड है, इसमें इतना ममत्व भाव हो जाता है, मेरापने का भाव दृढ़ हो जाता है, फिर इससे आत्मा को अलग करके जब देखना पड़े बहुत कठिन काम है। ये तो ऐसा ही है, दूध में से पानी को अलग करना, अथवा जलेबी में घुसी हुई चाशनी को अलग करना, या जलेबी में घुसे हुए मैदा को अलग करना, ये जैसे कठिन काम है, वैसे ही आत्मा और अनात्मा का जो अध्यास हो चुका है, इसके लिए भगवान हमें ऐसी विवेक बुद्धि दे, ऐसी शक्ति प्रदान करे। सत्संग तो कर ही रहे, लेकिन थोड़ा सा अलग से बैठ करके न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, इसका पाठ रोज करना है। न वर्णा न वर्णा श्रमाचार धर्मा, सारे अनर्थ की परंपरा वहीं से शुरू होती है, जब मैं शरीर हूं ये अभिमान हो जाए। शरीर में ममत्व भाव होने से फिर जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान सब होने लगता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, नाम का अभिमान, रूप का अभिमान। परमात्मा का जो स्वरूप है, अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम आद्योत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। मैं हूं, मैं अपने को जानता हूं, और मैं कैसा हूं, आनंद स्वरूप हूं। दो चीजों तक तो हम सब लगभग पहुंचे हुए हैं। सबको पता है कि मैं हूं, मैं अपने को जानता हूं, और जो मैं आनंद स्वरूप हूं, इसका भान क्यों नहीं हो पा रहा है?